रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चीन भ्रमण संपन्न कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लौटे स्वदेश। चीन के साथ ऋण से संबंधित कोई समझौता नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ओली द्वारा स्पष्ट। मौजूदा समझौते में नेपाल को मिलने वाली सारी मदद अनुदान है, प्रधानमंत्री का कथन। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के नतीजों से पार्टी का उत्साह बढ़ा है, नेकपा माओवादी केन्द्र का कथन। कानून में संशोधन कर भी निवेश का माहौल बनाने की उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल की प्रतिबद्धता। और गजा पर ताजा इसराइली हमले में 48 फिलिस्तीनियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के चार दिवसीय भ्रमण पूरा कर आज स्वदेश लौटे हैं। आज स्वदेश लौटने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल के अति विशिष्ट कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि चीन से ऋण संबंधी कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि उनकी चीन यात्रा के दौरान BRI के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनी कि बाद में प्रत्येक परियोजना के तहत अलग अलग चर्चा और समझौते होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वह उचित समय पर भारत का दौरा करेंगे और उसके लिए जरूरी तैयारियां की जा रही है। वहीं सरकार को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मौजूदा गठबंधन अगले चुनाव तक बना रहेगा और दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा उनके बाद प्रधानमंत्री होंगे। अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। प्रधानमंत्री ओली इसी मार्ग शीर्ष 17 गते को चार दिवसीय दौरे पर चीन गए थे। यात्रा के दौरान नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर के साथ साथ नेपाल चीन व्यापार संवर्धन पर समझौता, विकास योजना 2025 से 2029 पर समझौता, नेपाल टेलीविजन और चीनी संचार समूह के बीच संचार प्रविधि पर समझौता, ज्ञापन पत्र लगायत विभिन्न 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरह चीन सरकार की ओर 2072 साल से अब तक घोषणा किए गए अनुदान रकम और नगद सहयोग करीब 2,17,00,00,000 नेपाली रुपए और अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिन फंग द्वारा 9,34,00,00,000 नेपाली रुपए नेपाल के लिए नगद सहयोग की भी घोषणा की गई है। नेकपा माओवादी केंद्र के उपचुनाव पर प्रारंभिक समीक्षा करते हुए उपचुनाव से उत्साह और महत्वपूर्ण आधार बढ़ने का निष्कर्ष निकाला है। पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड निवास खुमलटार में आज हुई पदाधिकारी बैठक ने ये निष्कर्ष निकाला है। स्थानीयतः उपचुनाव से सीख लेते हुए 2084 साल में होने वाले चुनाव की तैयारी करने की बात बैठक में हुई। ये जानकारी माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने दी। बैठक के बाद प्रवक्ता सापकोटा ने बताया कि बृहत वामपंथी एकीकरण और कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन के लिए उपचुनाव से आधार मिला है। बैठक में अन्य विविध विषयों पर विमर्श हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में हर साल प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, इसलिए जलवायु न्याय के लिए प्रभावित देशों का एकजुट होना जरूरी है। आज काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल केंद्रीय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि जलवायु प्रभाव के कारण समाज में गरीबी बढ़ी है और कृषि उत्पादन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष का क्रियान्वयन करने के लिए नेपाल दूरसंचार प्राविधिकरण को निर्देश किया है। आज जमल स्थित प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद मंत्री गुरुंग ने बोर्ड निर्देशक और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल नेपाल में एकीकृत कार्यालय प्रबंध प्रणाली बनाने के अभियान को सरकार साकार करने के लिए मंत्रालय के तहत संस्थानों का सहयोग आवश्यक है। सरकार के प्रवक्ता समेत रहे मंत्री गुरुंग ने कहा कि काठमांडू महानगर पालिका में 5G सेवा शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 33वें अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान के संबंध में आज गृह मंत्रालय में 26 नागरिक संस्थानों द्वारा ध्यानाकर्षण पत्र लेते हुए गृहमंत्री लेखक ने सरकार महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सूचना आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ ने कहा कि सार्वजनिक निकायों और संस्थाओं में सूचना छिपाने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज की बैठक से सूचना तक नागरिकों की पहुंच के लिए आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका, समस्या और चुनौतियों के संबंध में हुए विचार विमर्श में सूचना प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ ने कहा कि सूचना के संरक्षण तथा हक को मूल प्रवाहीकरण में लाने की चुनौती है। 21वां राष्ट्रीय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस आज देशभर मनाया गया। दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाओं के उचित व्यवस्थापन और क्षमता अभिवृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉ रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभाग के निर्देशक डॉ विकास देवकोटा लगायत ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाओं के कामों की प्रशंसा की थी। जाजरकोट की भेरी नगर पालिका नुआ गांव के नजदीक हुई जीप दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे में मरने वालों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि इस हादसे में जीप चालक और एक गाड़ी मैकेनिक की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने कहा कि विवाह पंचमी महोत्सव से नेपाल भारत बीच के प्राचीन संबंध को प्रगाढ़ बनाने का काम करता है। उन्होंने भारत के अयोध्या से आई बारात का आज जनकपुर धाम स्थित मधेश भवन में स्वागत करते हुए उनके लिए दिवा भोज आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। अयोध्या से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नेतृत्व में लगभग 500 की संख्या में आए बारातियों के लिए मिथिला की परंपरा अनुसार दिवा भोज का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि जनकपुर धाम में राम जानकी विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत आज 5वें दिन एक समारोह के बीच मटकोर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल शुक्रवार को वैदिक परंपरा अनुसार राम जानकी विवाह समारोह आयोजित होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में संस्था ने इसराइल पर गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसराइल ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है। पिछले दिनों गजा में इजरायली हमलों से कम 48 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। एमनेस्टी कहा है कि उन्होंने इसराइल के सैन्य अभियान और उनकी नीतियों के सामूहिक प्रभाव पर गौर किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि गजा में इसराइल ने नरसंहार की कानूनी सीमा पार कर दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फिलिस्तीनी कुपोषण और बीमारी के साथ बड़े पैमाने पर विनाश का सामना कर रहे हैं। इसराइल की सेना का कहना है कि नई रिपोर्ट में पेश किए गए दावे पूरी तरह से निराधार है। इसराइल का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है और गजा में युद्ध की शुरुआत 15 महीने पहले हमास के हमले के बाद हुई थी। इसराइल हमास के हमलों के बाद अपनी रक्षा का अधिकार रखता है। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन भ्रमण संपन्न कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लौटे स्वदेश। चीन के साथ ऋण से संबंधित कोई समझौता नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ओली द्वारा स्पष्ट। मौजूदा समझौते में नेपाल को मिलने वाली सारी मदद अनुदान है, प्रधानमंत्री का कथन। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के नतीजों से पार्टी का उत्साह बढ़ा है, नेकपा माओवादी केन्द्र का कथन। कानून में संशोधन कर भी निवेश का माहौल बनाने की उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल की प्रतिबद्धता। और गजा पर ताजा इसराइली हमले में 48 फिलिस्तीनियों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।